ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले एक सम्राट किसी राज्य का बीमार पड़ा। बीमारी ऐसी थी कि बहुत इलाज कराया पर ठीक ना हुई। दूर दूर से वैद्य हकीम कई लोग आए, परंतु सब ने जवाब दे दिया और उस राजा की हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी। समय एक ऐसा आ गया कि लग रहा था बचने की कोई उम्मीद नहीं। तब किसी ने बताया कि राज्य के बाहर एक युवा तपस्वी रहता है, यदि उसे बुलाया जाए तो संभवतः बीमारी का इलाज हो सकता है। वो सन्यासी आया, उसने राजा को देखा और कहा कि इलाज बहुत सरल है पर मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आप वो कर नहीं पाओगे, परंतु है बहुत सरल। राजा ने आग्रह किया, बताओ। राज परिवार ने आग्रह किया, बताओ। उसने कहा, नहीं बता सकता, जाने दो, छोड़ दो, क्योंकि शायद आप लोग नहीं कर पाओगे, पर है बहुत ही सहज। रानी ने, राज परिवार ने, सब ने बहुत पूछा कि बता तो दो। तो आखिर उस सन्यासी ने कहा, इलाज है इस राज्य के 10,000 छोटे छोटे बच्चे मार दिए जाए और उनके रक्त से राजा को स्नान करा दिया जाए तो राजा अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगा। जैसे ही राजा ने यह सुना, 10,000 छोटे बच्चे, उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने लिए किसी की मृत्यु नहीं चाहता, और मैं अगर जी भी लिया तो कभी ना कभी तो मरूंगा ही, और वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, तो क्यों मैं किसी की मृत्यु का कारण बनूं। वो सन्यासी तो वहां से चला गया, परंतु राजमहल में बहुत बुद्धिमान लोग भी थे, राज परिवार था, सब ने राजा को बहुत समझाया कि आपके जीवन की कीमत बहुत मूल्यवान है, यदि आप अकेले जीवंत रहे तो 10 करोड़ बच्चे जीवंत रह सकते हैं। तरह तरह से राजा को समझाया गया कि मान लो मान लो, परंतु राजा तैयार नहीं था। और फिर उस सन्यासी का भी क्या भरोसा, कहकर तो गया पर वो होगा ना होगा इसका क्या भरोसा। फिर भी राज परिवार नहीं मानता और फला फला तारीख तक, लगभग 6 मास तक, वो सन्यासी 6 मास की तारीख देकर जाता है, इस तारीख को ये होना चाहिए आज से। जबकि राजा नहीं मानता, फिर भी उसे अंततोगत्वा मानना पड़ता है, राज परिवार का प्रेशर फोर्स, और धीरे धीरे बच्चे लाए जाते हैं। परंतु अब राजा सो नहीं पाता है, दिन रात उसे बस उन बच्चों का ही ख्याल कि मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से सोचता रहता है, एक गहरी चिंता और चिंतन में चला जाता है उसका मन, और दिन रात बस वही चिंतन चल रहा है, नहीं नहीं नहीं। परंतु फिर भी बच्चे लाना चालू रहता है। 10,000 बच्चे हो जाते हैं और वो तारीख भी आ जाती है, जिस दिन उन सबको मार दिया जाना था, और जिस जब वो दिन आ जाता है और वो सारे बच्चे खड़े कर दिए जाते हैं, एकाएक राजा कहता है नहीं, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। और तभी और एक अद्भुत घटना घटती है कि राजा ठीक हो गया। जैसे ही उसने कहा कि मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, राजा ठीक हो गया। उस सन्यासी को फिर बुलाया जाता है कि राजा कैसे ठीक हो गया, जैसे कि अभी तो बच्चे कटे ही नहीं, मरे ही नहीं गए, और राज्य के लोग भी कुछ तो ऐसा सोच रहे थे, सारे राज्य के आधे लोग तो ये प्रार्थना कर रहे थे कि राजा पहले ही ठीक हो जाए ताकि बच्चे ना मरे जाए। कुछ लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि राजा पहले ही मर जाए। दोनों ही तरह के लोग थे राज्य में, परंतु बच्चे सामने हैं, और जैसे ही राजा कहता है नहीं, राजा ठीक हो गया है, सन्यासी को फिर से बुलाया जाता है कि राजा कैसे ठीक हो गया। एक बहुत सुंदर उत्तर वो सन्यासी देता है। वो कहता है कि इन 6 मास में राजा उस मैं के चिंतन से बाहर निकल गया। वो मैं जो देह को सोच रहा था, वो मैं जो बीमारी का चिंतन कर रहा था, वो मैं जो दिन रात लगा हुआ था बीमारी बीमारी बीमारी, मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं, वो मैं उस देह से निकलकर कहीं और खड़ा हो गया था, और सारा ध्यान अपनी ओर से निकलकर किसी और चीज में चला गया था। और जब जब अपनी ओर से निकलकर ध्यान किसी और चीज में चला जाए, तब तब कुछ अद्भुत सी घटनाएं घट जाती है। जो देह का चिंतन था और बीमारी का चिंतन था, उससे हटकर अब दिन रात वो केवल बच्चों का सोच रहा था, केवल उनकी चीख और उनकी पुकार उसे सुनाई दे रही थी, और उस बीमारी से वो स्वतः ही ठीक हो गया। ये बहुत ही छोटी सी कहानी है, परंतु चिंतनीय है। शायद झूठी होगी, परंतु झूठे होने से उसमें जो तथ्य है वो कम नहीं हो जाते। जब जब हम इस देह से निकलकर इस छोटे मैं से निकलकर बाहर के बड़े मैं में पहुंचते हैं, जो मैं वास्तविक हूं, तब तब यहां की सारी चीजें विलीन हो जाती है। जो जो समस्या है, बीमारियां है, प्रॉब्लम्स है, इस छोटे मैं से बड़े मैं में चले जाना, इस देह के पिंजरे से बाहर निकलकर सोचना, ये एक अर्थ है आज का जो टॉपिक है उसका। थिंक बिफोर यू थिंक, अर्थात सोचने से पहले सोचो। संसार में हमने थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक, इस तरह के बहुत सारे शब्द सुने हैं, परंतु आज जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है। सोचने से पहले सोचना, क्या हो सकता है इसका अर्थ? एक अर्थ तो ये है कि अपने छोटे से निकलकर, छोटे मैं से निकलकर बड़े मैं में आना। दूसरा एक अर्थ है अवेयरनेस, जागरण, होश, अपने हर संकल्प के प्रति होश, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, जो जो विचार उठ रहे हैं, कौन सी तरंगे हैं उनमें, ये जानना। तीसरा अर्थ हो सकता है पुनः विचार करना, थिंक बिफोर यू थिंक। चौथा अर्थ हो सकता है सोच में भी गलती ना हो, इसलिए उस सोच को भी सोचना, जो थॉट्स है, जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग के विषय में भी थिंक करना, सोचने से पहले सोचना। क्यों इसकी आवश्यकता है? क्योंकि संकल्प बीज है, विचार बीज है। जो जो संसार में महानताएं हुई है, महान कार्य हुए हैं, वो सब संकल्प से निर्माण हुए हैं। जो जो विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, भ्रष्टाचार अत्याचार हुआ है, वो भी सब कुछ जन्म लिया है संकल्प से। संकल्प वो बीज है, विचार वह बीज है। उस बीज के प्रति अवेयरनेस, उस होश की अवस्था में पहुंचना, अर्थात थिंक बिफोर यू थिंक। जब हम सोच रहे थे इसके विषय में आज सुबह से, कुछ विचार मन में आए। इस कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में या इस प्रोग्राम में इसका क्या अर्थ हो सकता है? आज सुबह से आप अमृत वेला उठे, यहां पर योग हुआ, मेडिटेशन हुआ, उसके बाद में दिन भर में बहुत सारे लेक्चर्स हुए, क्लासेस हुई, बहुत सारी चीजें हमने सुनी, देखी, सब कुछ जो देखा और सब कुछ जो समझा, मन में कुछ ना कुछ अंकित हुआ है, मन में उन सब के विषय में विचार चले हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव, कुछ न्यूट्रल, कुछ ऐसे ही व्यर्थ, परंतु चले जरूर हैं। आज अभी हम देखेंगे कि क्या हम करें जिससे यह विचार जो चल रहे हैं इनको हम समझें। क्या विचार चल रहे हैं? हर एक मनुष्य के मन में निरंतर विचारों की धाराएं बह रही है, परंतु कुछ व्यक्ति उनके प्रति सजग है, कुछ सोए हुए हैं, कुछ जागृत चेतना है, कुछ मूर्छित चेतना है। जो जो जागृत है वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो जो मूर्छित है कहीं ना कहीं पीछे 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 जा रहे हैं, परंतु उन्हें भी नहीं पता, या फिर वही ठहरे हैं जहां पहले थे। उस छोटे मैं से निकलकर थोड़े समय के लिए बाहर आ जाना, जैसे उस 6 मास में उस राजा के साथ हुआ, दिन रात उसका चिंतन चलता रहा केवल उन बच्चों के विषय में, और वो अपनी बीमारी से स्वतः ही ठीक हो गया, निकल के बाहर आ गया। ये कैसी अकस्मात घटना हो गई? तो थिंक बिफोर यू थिंक में हम ऐसी टोटल 8 बातें देखेंगे जो हर एक को नोट करके रखनी है अपने पास, जो हर दिन करनी है, और यदि समय बचा तो कुछ छोटी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी या तो आज करेंगे या तो कल। आर्ट ऑफ थिंकिंग, टू थिंक इज द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड कहा जाता है। बाकी सारे कार्य बहुत आसान है, मान लेना बहुत आसान है, परंतु सोचना, विचार करना सबसे कठिन काम है। जो परंपराएं, जो धाराएं संसार में सदियों से चल रही है, उनको मान लेना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, सरेंडर कर देना, यह आसान है, परंतु मन में विद्रोह उत्पन्न हो, मन में विचार चले, तब क्रांति घटित होती है। और जब तक विचार नहीं, जब तक संकल्प नहीं, जब तक मन में कुछ विरोधी धाराएं नहीं बहती, जो सदियों की रूढ़िवादिता है, विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। धक्का चाहिए, एक झटका चाहिए, यहां पर आ गए सब अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे आपसे, विचार तर्क, पांच प्रकार की विचार शैली होती है, थिंकिंग स्टाइल्स। उसके भी पहले दो प्रकार के विचारक होते हैं, डाइवर्जेंट एक विचारक होता है, कॉन्वर्जेंट एक दूसरा विचारक होता है। कॉन्वर्जेंट अर्थात जो केवल ये सोचता है ये करना है ये नहीं करना है, हां और ना में जिसका जवाब है। डाइवर्जेंट अर्थात जो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समाता है, हां भी हो सकता है ना भी हो सकता है, एक ही व्यक्ति में 100 परते हैं विचारों की, व्यक्तित्व की। हम ये नहीं कह सकते ये व्यक्ति ऐसा ही है, वो ऐसा है परंतु उसके कुछ और भी पहलू है। कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पांच विचारों के शैली है, फाइव टाइप ऑफ थिंकिंग स्टाइल। पैरिस शब्द है अंग्रेजी में, पी प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक अर्थात वह व्यक्ति जो व्यवहारवादिता, हर चीज को प्रैक्टिकल देखता है। प्रैग्मैटिक अर्थात प्रैक्टिकल, जो भी है हर चीज को प्रैक्टिकल तुला में तोलेगा कि यह चीज फिजिबल है, प्रैक्टिकल है या नहीं है, उस व्यक्तित्व को कहा जाता है प्रैग्मैटिक, प्रैग्मैटिक विचारधारा। दूसरा है पी ए एनालिस्ट, हर चीज का एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, कुछ भी ऐसे स्वीकार नहीं करता। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज यू हैव रेड इट समवेयर, डू नॉट बिलीव समथिंग बिकॉज इट इज सेड बाय समबडी, डू नॉट बिलीव समथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, डू नॉट बिलीव समथिंग बिकॉज इट हैज बीन हेलोड बाय ट्रेडिशंस, फाइंड द ट्रूथ यूर सेल्फ। इसलिए किसी बात पर विश्वास नहीं कर रो क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा है, इसलिए किसी बात पर विश्वास नहीं करना क्योंकि वो संस्कृति और धाराओं से पवित्र होती हुई आई है, इसलिए किसी बात पर विश्वास नहीं करना क्योंकि वो शास्त्रों में लिखा है या किसी तथा कथित महान व्यक्ति ने कहा है। सत्य को स्वयं ढूंढना है। एनालिसिस, इसलिए कहा थिंकिंग, विचार करना सबसे डिफिकल्ट काम है दुनिया का। मान लेना, विश्वास कर लेना आसान है, किसी ने कहा ये भगवान है, किसी ने कहा यहां जाओ ब्रह्मा कुमारी में बहुत सब अच्छा है, हम गए हां सब अच्छा है, धक्का नहीं लगा, हमने एनालिसिस नहीं किया, चाहे यहां या किसी पर किसी भी स्थान में संसार के। जब तक खुद एनालिसिस ना करो, विश्लेषण ना करो, तब तक किसी बात का स्वीकार नहीं करना। एनालिस्ट पर्सनालिटी, पी ए आर, आर अर्थात रियलिस्टिक, यथार्थवादी, जो चीजें हैं वो है, जो नहीं है वो नहीं है, रियलिस्टिक रहना। आई आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, जो चाहता है कि हर चीज परफेक्ट हो। और एस सिंथेसिस्ट, सिंथेसिस शब्द से निकला है सिंथेटिस्ट, संश्लेषक, जो हर चीज में व्हाट इफ, अगर ये ऐसा हो तो द्वंद्व उत्पन्न करता है मन में और उस द्वंद्व से उसकी ग्रोथ होती है। तो ऐसी पांच प्रकार की चिंतन की धाराएं हैं या चिंतक चिंतन की शैली है। मैं इसमें से कौन हूं प्रैग्मैटिक, मैं इसमें से कौन हूं रियलिस्टिक, मैं इसमें से कौन हूं आइडियलिस्टिक, मैं इसमें से कौन हूं सिंथेसिस्ट, क्या हूं, स्वयं को देखना है। परंतु धक्का लगना चाहिए। जैसे एक स्त्री है, बौद्ध धर्म में कहानी है, एक्या दत्ता, वो स्त्री बौद्ध भिक्षुणी है, और एक दिन वो आईने में देखती है और उसको अपना सिर दिखाई नहीं देता है और उसे चिंता हो जाती है कि मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है। जब भी आईने में देखती है उसका सिर ही नहीं है। वो कहती है अपने सारे दूसरे साथियों से कि मेरा सिर गायब हो गया है, मेरा सिर नहीं दिखाई दे रहा है। वो उसको समझाते तुम्हारा सिर ये रहा है, पर वो मानने को तैयार नहीं। वो भ्रम इतना गहरा पैट गया है कि वो कहती है मेरा सिर ही नहीं है और दिन ब दिन विक्षिप्त होती जाती है, पागलपन आ जाता है कि मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर नहीं है। उसको जबरदस्ती लेके जाया जाता है, कमरे में बिठाया जाता है, परंतु वो तोड़फोड़ करने पर उतारू होती है, तब उसे एक चेयर पे बांध दिया जाता है। और किसी को जब कुछ नहीं समझता, इसे कैसे कन्विंस करे, कैसे इसको बताए कि तुम्हारा सिर है, परंतु वो बात इतनी गहरी चली गई है कि वो मानने को तैयार ही नहीं। वो कहती मेरा सिर ही नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति एक डंडा लेता है और जोर से उसके सिर पे मारता है और वो चिल्लाती है आ, तब उसको कहता है ये रहा तुम्हारा सिर। क्या चाहिए? डंडा। हमारे विचारों को भी ऐसा ही एक तर्क का डंडा चाहिए। भावनाएं बहुत अच्छी चीज है, भावनाओं में जीवन जीना, भावनाओं में बहते रहना आवश्यक है, परंतु एक दूसरा पहलू भी है जीवन का और वो है विचार। जीवन में जो चीजें हो रही है विचार, चीज का विचार। यहां आए कुछ भी चीज को यहां का स्वीकार नहीं करो, विचार। एक एक व्यक्ति को मिलो और पूछो तुम यहां क्यों आए हो, वो अपने जीवन की कुछ कहानी सुनाएगा। यहां के सबसे ग्रेटेस्ट लेक्चर वो व्यक्ति होगा जो झाड़ू झाड़ रहा है, जो किचन में कहीं है, जो कहीं पर स्टेज पर नहीं है, परंतु शायद उसके मुख से जो अनुभव निकलेगा वही सर्वोत्तम सत्य है जीवन का। उसे शायद बोलना नहीं आता, उसे शायद कोई जानता नहीं, परंतु उससे मिलके पूछो कि तुम यहां क्यों आए, वो एक अद्भुत अनुभव सुनाएगा। तो थिंकिंग की इस प्रोसेस में, थिंकिंग के इस आर्ट में हम आठ बातें देखेंगे। सबसे पहला है टी। टी अर्थात थिंक अबाउट थिंकिंग। जो मन में विचार चल रहे हैं, क्या हमने उसके विषय में सोचा है? मेरी विचारधारा कैसी है? पॉजिटिव है, निगेटिव है, वेस्ट है, पावरफुल है, कैसी है? यदि एकदम डिफिकल्ट पोजिशन में मुझे बिठा दिया जाए तो क्या होता है? मैं कैसे करूंगा उसको, कैसे उसको फेस करूंगा? अचानक प्राकृतिक आपदा है, अचानक जीवन में आई हुई कोई परिस्थिति, अचानक स्वजनों की मृत्यु, अचानक स्वजनों की बीमारी, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? एंड हाउ मच प्रिपेयर्ड आई एम फॉर ऑल दिस। थिंक अबाउट थिंकिंग। अपने विचारों की क्वालिटी को सुधारना है, उसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा मेरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह के विचार आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, अवचेतन की किस गहरी परतों से ये विचार निकल रहा है। पाश्चात्य जगत का एक लेखक बहुत प्रसिद्ध मार्क ट्वेन, उसने अपनी जीवन कहानी में कहीं लिखा है कि एक बार मैं चर्च में था और चर्च में बहुत सुंदर प्रवचन चल रहा था और वो प्रवचन सुनते ही मुझे लगा कि आज तो जब वो दान पेटी घूमेगी मैं $10 तो दे के रहूंगा, क्या मैं भगवान के लिए इतना नहीं कर सकता? इतना सुंदर वो प्रवचन सुनते सुनते उसके मन में वो विचार आया, परंतु जैसे जैसे प्रवचन थोड़ा पूरा होने लगा उसको लगने लगा कि $10 तो बहुत ज्यादा है, मैं $5 दूंगा। प्रवचन पूरा हुआ, दान पेटी घूमने लगी, एक व्यक्ति दान पेटी लेकर घूमने लगा। जब दान पेटी घूमने लगी तो वो सोचने लगा $5 इतने नहीं, मैं $3 दूंगा। फिर दान पेटी उसकी रो में आती है, उसकी लाइन में आती है, और जब बाजू वाले के पास होता है तब सोचता है कि नहीं मैं एक ही डॉलर दूंगा, तीन भी बहुत हो गए। और जब उसके सामने दान पेटी आती है तब वो उसी में से दो तीन डॉलर निकाल के रख देता है और दान पेटी आगे। बाद में विचार करता है ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो सोचा था देने का पर जब सामने आई तब तो उसमें का ही उठा लिया। मन की कितने परते हैं, सो मेनी लेयर्स। सुबह हम क्या है और शाम में हम क्या है, अलग अलग व्यक्तित्व है, व्यक्ति बटा हुआ है अपने आप में, कहीं लगता है बहुत अच्छा है कहीं लगता है कुछ और, परंतु खंड खंड बटा है व्यक्तित्व, सिजोफ्रेनिक हो चुका है कहीं ना कहीं, डिवाइडेड पर्सनैलिटी। कहीं लगता है बहुत धार्मिक है परंतु कहीं लगता है बिल्कुल अधार्मिक है। लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है कि एक दिन सुबह सुबह, रशिया का ऑथर, कि मैं सुबह सुबह चर्च में चला गया और देखा एक आवाज आ रही है चर्च से, 4 बजे का समय है और कोई व्यक्ति है जो भगवान से कह रहा, हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने ये पाप किए है। टॉल्स्टॉय लिखता है कि मुझे लगा पता नहीं ये कौन महात्मा आ गया कि जो इस तरह से अपने सारे पापों को भगवान के सामने स्वीकार कर रहा है, जरूर ये तो बहुत कोई बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति, मतलब अच्छा ही व्यक्ति होगा, सच्चा व्यक्ति होगा। और वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है ये तो नगर सेठ है, सेठ का शहर का जो सेठ है वही है। ध्यान से देखता है उसको कि अच्छा ये तो इतने अच्छे अच्छे काम करता है परंतु ये प्रार्थना ऐसे कैसे कर रहा है। और उतने में वो जो व्यक्ति जो प्रार्थना करता होता है वो देख लेता है कि पीछे कोई है, और वो पीछे से आता है और कहता है कह ही तुमने कुछ सुना तो नहीं। लियो टॉल्स्टॉय से कहता है, वो कहते हैं हां सुन तो लिया आपने जो कहा कि आप कह रहे थे मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने ये किया वो किया। वो व्यक्ति कहता है सुन लिया, अब ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बात ही मेरे और भगवान के बीच थी, दिखा था कुछ रहे और है कुछ और। खंडित व्यक्तित्व, स्वयं स्वयं को देखना है कि मैं जो हूं वैसा ही हूं। चरित्र अर्थात व्यक्ति 4 दीवारें, एक कमरे में बंद जब रहता है और जो सोचता है और जो करता है वो वास्तविक व्यक्तित्व है, वो नहीं जो दूसरों के सामने दिखाता है मैं ये हूं या हूं त्यों हूं, ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, वो व्यक्तित्व नहीं है। What you are in silence and loneliness. तो सबसे पहला टी अर्थात think about thinking. अपने जो विचार चल रहे हैं उन्हीं विचारों के विषय में सोचो कि ये जो विचारधारा है इसको क्या किया जाए, किस कैटेगरी की है ये। H दूसरा है H अर्थात habit. Habit डालनी है, एक नई habit. कौन सी वो हैबिट है? थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी एक्शन लेने करने से पहले तुरंत एक्शन नहीं कर दो ताकि उसका नहीं तो पश्चाताप होता है, करने से पहले रुक जाओ, 2 मिनट सोचो फिर करो। ए फॉर एक्शन, बी फॉर थिंक बिफोर यू बाय। कुछ भी परचेस करने से पहले 2 मिनट रुको और पूछो स्वयं को यह जरूरी है या नहीं। आज ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का युग है, शॉपिंग भी एक एडिक्शन बन गया है, बाय करो और चीज आ जाती है, कितनी चीजें ऐसी है वो आ गई है उसको हाथ भी नहीं लगाया अभी तक। एक भाई बता रहे थे मेरी पत्नी के पास इतनी साड़ियां है कि जो जो वो हर दिन नई नई मंगाती रहती है पर पुरानों का अभी तक टैग भी नहीं निकला है। ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, थिंक बिफोर यू बाय। ए बी सी, थिंक बिफोर यू कॉल, थिंक बिफोर यू कॉमेंट। सबसे बड़ा युद्ध जो चल रहा है आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक व्यक्ति इधर से भेजता है, एक व्यक्ति इधर से भेजता है, सोशल मीडिया अब्यूज। पहले लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में हो जाया करती थी, अभी कहां होती है? सोशल मीडिया के मैदान में। ऑनलाइन अब्यूजेस, थिंक बिफोर यू कॉमेंट, थिंक बिफोर यू क्लिक, सी क्या कर रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट. थिंक बिफोर यू डिसाइड, डी जीवन में निरंतर निर्णय लेने हैं, परंतु हम क्या निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन के विषय में. क्या वैसे ही चलते रहे जैसे चल रहे हैं, या कुछ परिवर्तन उसमें करना है. थिंक बिफोर यू फॉरवर्ड, एफ कुछ भी भेजने से पहले थिंक. सबसे बड़ा टाइम वेस्टर जिसको कहेंगे लोग, बीच में न्यूज़पेपर में आया था, ब्लॉक हो गया था, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट्स, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट्स के मैसेजेस. थॉट फॉर द डे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, यही चालू है सारे विश्व भर में हर चीज के लिए. गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड मॉर्निंग. किसी ने बीच में भेजा था हैप्पी श्राद्ध. थिंक बिफोर यू फॉरवर्ड, थिंक बिफोर यू फाइट. लड़ाई हो गई परंतु बाद में लंबा समय पश्चाताप, लंबा समय बेचैनी रहती है. अंग्रेजी में कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर. अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है. जीत तो जाएंगे हम, बता तो देंगे कि मैं राइट हूं तुम रॉन्ग हो, परंतु जो क्रैक आ गई है रिलेशनशिप में उसको कौन रिपेयर करेगा, वो कभी ना हो पाएगी शायद. जी थिंक बिफोर यू गेस, गेस वर्क, कंजेक्चर, अनुमान लगाते बैठना, ये ऐसा तो नहीं, ये वैसा तो नहीं. रुकना है जब भी कोई गेस करो, क्योंकि सत्य वो नहीं जो दिखाई दे रहा है, सत्य कुछ और है. एच थिंक बिफोर यू हर्ट, थिंक बिफोर यू हार्म. किसी को हर्ट करने से पहले, किसी को हार्म करने से पहले, उसकी कोमल भावनाओं को हर्ट करने से पहले रोकना है अपने आप को. आई थिंक बिफोर यू इन्वॉल्व, थिंक बिफोर यू इंडल्ज इन समथिंग. एक व्यक्ति जो व्यसनी बन जाता है, कहां से शुरुआत होती है, चालू कहां से करता है और एंड कहां हो जाता है, क्यों वो चालू करता है. धीरे धीरे, एट फर्स्ट मैन टेक्स ड्रिंक, देन ड्रिंक टेक्स ड्रिंक, एंड देन ड्रिंक टेक्स द मैन. शुरुआत थोड़े से चालू होती है, पर धीरे धीरे इतना इन्वॉल्व हो जाता है, इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि डूब जाता है उसमें. चाहे वो कोई भी व्यसन हो, केवल स्मोकिंग और केवल अल्कोहल नहीं, वो इंटरनेट हो सकता है, वो शॉपिंग हो सकता है, वो ऑनलाइन न्यूज हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग. एडिक्शन एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति किसी भी चीज को एडिक्ट हो जाता है, बार 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 उस चीज को रिपीट करते जाओ, एडिक्शन हो गया. हाँ, वो अगर क्रिएटिव है तो ग्रोथ होगी, पर वो यदि कुछ और है तो उसका पतन होगा. जितने ड्रग एडिक्ट्स कहां से चालू हुए, इतिहास है हर एक का. बीच में कुछ टेररिस्ट है, उनका इंटरव्यू लिया गया था, उनसे पूछा गया था उनके जीवन के विषय में. उन्होंने कहा था, बचपन में हमको वीडियो गेम्स हम खेलते थे. कौन से वीडियो गेम्स? इधर से काट, उधर से मार. ये वीडियो गेम्स उनको बहुत पसंद थे और धीरे धीरे वही वो बन गए. थिंक बिफोर यू हर्ट, बिफोर यू हार्म, थिंक बिफोर यू इंडल्ज, इन्वॉल्व. जे थिंक बिफोर यू जस्टिफाई और जज समबड़ी और जोक. किसी पर हंसने से पहले, किसी पर कमेंट करने से पहले, किसी का कटाक्ष करने से पहले रुकना और सोचना. सोच को ठीक करना यह सबसे कठिन काम है दुनिया का, इसलिए बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं. बहुत कठिन काम, परंतु सोच ही तो आधार है, क्यों परिवर्तन नहीं हो पाता? और जब मैं अपनी सोच को नहीं चेंज करूंगा, दूसरों को हम कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते, ना ही चेंज कर सकते कभी। इस तरह से बहुत लंबी एक लिस्ट हो सकती है, इस लिस्ट में अभी हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला है थिंकिंग क्या है, उसके विषय में थिंक करना। दूसरा बताया आदत, इस तरह की हमको नई आदतों का निर्माण करना है, हर विषय को तुरंत स्वीकार नहीं करना परंतु उसके विषय में विचार करना, और विचार के लिए कुछ और चीजों की आवश्यकता है, उसको हम देखेंगे। THI, आई अर्थात इनक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, जानने की क्या हो, उत्कंठा, क्यूरियोसिटी, चीजें है क्या, जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये जो हम यहां आए हैं, ये संस्था क्या है, ये लोग क्या है, ये कर क्या रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है, इनका जीवन क्या है, हम कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कौन, हम कौन, या इतिहास में, संसार में जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है उसका आधार, उसका बेसिस क्या है, क्यों हो रहा है वो, ये सारे विचारणीय तथ्य है। परंतु व्यक्ति इतना खोया हुआ है अपने जीवन में, अपनी बिजी लाइफ में, कि कभी उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो सोचे और क्यूरियस हो जाए प्रकृति के विषय में, प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में। लोग आते हैं, हम देखते हैं माउंट में हर दिन इतने टूरिस्ट आते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, फोटो लेते हैं, बस चले, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रुके वहां पर, उस प्रकृति के उस सौंदर्य को देखे। इंटरेस्ट खाली एक ही चीज में है, फोटो लो और चलो। कैसा हमारा मैकेनिकल जीवन हो चुका है, स्टॉप करना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी रेज करनी पड़ेगी जीवन के विषय में क्या है। इनक्विजिटिवनेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, THIN, अर्थात न्यूनेस, हर चीज में न्यूनेस लानी है, और हर दिन नई चीजें सीखनी है, चाहे वो नई भाषा है, चाहे वो नई स्किल है, चाहे वो नया आर्ट है, कुछ ना कुछ स्वयं में नवीनता भरनी है, चाहे वो काउंसिलिंग है, चाहे वो कॉन्वर्सेशन है, बात करना है, सोचना है, विचार करना है, विजुअलाइज करना है, हर दिन एक नई आर्ट, हर दिन एक नया उमंग। नहीं तो व्यक्ति वही वही चीज, वही सुबह उठना, वही जॉब, वही ड्यूटी, वही सब कुछ, और धीरे 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 वही करते करते बोर्डम। इस से नया कुछ करना है, क्या नया किया जा सकता है इसके विषय में सोचना है। न्यूनेस। अगला है THINK, के नो मोर, जितना हम जानते हैं शायद बहुत कम है, जीवन के विषय में, संबंधों के विषय में, अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहना हर चीज के विषय में, चाहे अपना जॉब है, चाहे अध्यात्म है, कुछ भी हो, हर एक के विषय में ज्ञान को बढ़ाते रहना। नो मोर, THINK, आय, चैलेंज, आय चैलेंज, चैलेंज करना है चीजों को, जो भी नई चीज आई या जो भी नई मान्यता है पहले उसको चैलेंज करो। ए इज इक्वल टू बी ऐसा लिखा हुआ है, हम चालू करें ए इज नॉट इक्वल टू बी, और फिर कोई निष्कर्ष तक पहुंचे। ये है बुद्धि को काम देना, बुद्धि को एग्जर्ट करना। जब तक हम बुद्धि को एग्जर्ट नहीं करते वो डल हो जाती है। मेमोरी, माइंड, मसल, बुद्धि जो है मसल की तरह है, अगर उसको एक्सरसाइज नहीं कराई जाए तो वो धीरे 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 डल होती जाती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम अभी अभी करेंगे, आधा पार्ट कल करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ यहां पर ग्रुप्स बनाने हैं, 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, हम बताएंगे आपको इसमें क्या करना है. सिक्स थिंकिंग हैट्स एक टेक्निक है विचार करने की, जिसके विषय में हम पहले एक दो बातें देखेंगे. सिक्स थिंकिंग हैट्स, जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो इस सिक्स थिंकिंग हैट्स को लगाना होता है. एक होती है व्हाइट हैट. व्हाइट हैट अर्थात तथ्य, सूचना, इंफॉर्मेशन. एक दूसरा होता है रेड हैट, लाल टोपी, अर्थात इसका अर्थ है इमोशंस, इमोशंस. तीसरी है एक ब्लू, लास्ट है ग्रीन हैट. ग्रीन हैट अर्थात क्रिएटिविटी. इसकी पूरी एक्टिविटी हम कल करेंगे. चौथी है ब्लू, एक्शन. पांचवी है व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक हैट. ब्लैक हैट है निगेटिव एस्पेक्ट उसका, ठीक है. और लास्ट सिक्स्थ है ब्लैक हैट, पॉजिटिव, येलो, पॉजिटिव एस्पेक्ट. तो ये छह हैट है, ठीक है. हम आपको एक परिस्थिति दे रहे हैं, एक दो ग्रुप्स को. यहां पे जो एक ग्रुप है, एक दो तीन लाइन, ठीक है. एक परिस्थिति ऐसी दे रहे हैं कि यहां से आप कहीं घूमने गए, ठीक है, और जब आ रहे थे वहां से तो आपकी बस का टायर पंचर हो गया, ठीक है. अब आप इसको, इस सिक्स हैट्स को यूज करके कैसे परिस्थिति को टैकल करेंगे. सबसे पहले व्हाइट हैट, ये सिचुएशन है. आप बस से गए, बस आधी रात हो गई है, रात के 12 बज गए हैं, पंचर हो गई है. हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन. आपको एक छोटा सा डिस्कशन करना है आपस में. ऐसा डिस्कशन करना है कि ये परिस्थिति है, इसमें क्या क्या इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं. एक इसमें क्रिएटिविटी आप क्या कर सकते हैं. आधी रात का समय है, 12 बज गए हैं और कार पंचर हो गई है या बस पंचर हो गई है, व्हाट यू विल डू. ब्लू, फाइनल एक्शन आपकी क्या है. और ब्लैक, इसमें निगेटिविटी क्या क्या हो सकती है, डिफिकल्टीज क्या क्या है वो. और येलो, पॉजिटिविटी. तो आप एक 3 मिनट के लिए सब लोग मिलके इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या इसको आप कैसे यूज करेंगे. दूसरी तरफ इधर जो इधर के भाई जो बैठे हैं, भाई लोग सब, आपको हम एक दूसरी कंडीशन दे रहे हैं कि एक प्राकृतिक आपदा हो गई है, ठीक है. आप लोग डिस्कस करेंगे, जल्दी से फटाफट डिस्कस कर लो सब मिलके, फिर आपको यहां आके उसके विषय में बताना है हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल. क्योंकि ये जो क्लास है थोड़ा अलग प्रकार का क्लास है, इसमें विचार करना है और ये सबसे डिफिकल्ट, जैसे हमने कहा. तो ये जो ग्रुप है, बहने छोड़कर जो भी भाई है, आप एक जगह पर है, ठीक है, वहां पर अचानक भूकंप आ गया. नाउ हाउ डू यू मैनेज बाय यूजिंग ऑल द सिक्स हैट्स. डिस्कशन करना चालू करेंगे. एक दो तीन, तीन रोज. आप लोग पीछे चले जाइए, भले आप दो भाई लोग पीछे चले जाइए. या एक 5 मिनट का काम है बस. हाँ पता है, 5 मिनट का काम है बस. दो ही ग्रुप ले रहा हूं, आधा ग्रुप कल कराऊंगा. जल्दी से डिस्कस करके बताएंगे. जी आपकी तरफ से इधर आ जाइए, कोई भी आ जाइए, या वहीं से बता दीजिए. चलिए सबसे पहले आपकी सिचुएशन है कि आप कहीं गए थे और गाड़ी का टायर पंचर हो गया है. सबसे पहले व्हाइट हैट है कि ये सिचुएशन है, ठीक है. व्हाट आर द इमोशंस. इमोशंस क्या क्या है. रात को क्या करेंगे, इतनी रात को पंचर हो गया, कुछ निगेटिव फीलिंग्स आएगी, कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, हर तरह की फीलिंग्स उसमें आएगी, ठीक है. परंतु लास्ट में आपको करना है ब्लू हैट, दैट इज नोन एज एक्शन, ठीक है. कुछ लोग कहेंगे कि इतनी रात हो गई, हमने पहले ही ड्राइवर को कहा था कि गाड़ी चेक करे, ठीक करे, तो कुछ निगेटिव बातें, ठीक है, उसको ओवरलुक करना है. फिर कुछ पॉजिटिव बातें रहेगी, कुछ क्रिएटिविटी उसमें करनी है. स्टेफनी है, या फिर गैरेज ढूंढना कहीं है, या कोई आ सकता है क्या, फोन लगाना. तो इस तरह से बहुत सारी उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं. एंड यू आर गोइंग टू मैनेज दैट सिचुएशन. ऐसी जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आएगी, उसमें हम कभी कभी इतना निगेटिव हो जाते हैं कि पॉजिटिव छूट जाता है, क्रिएटिविटी छूट जाती है. ठीक है, अप्लाइंग इसके विषय में हम थोड़ा कल डिस्कस करेंगे, आज तो लेट हो रहा है। दूसरा ग्रुप इधर था, अर्थक्वेक आ गया, हाउ डू अप्लाई ऑल द हैट्स, कैसे अप्लाई करेंगे? कुछ नेगेटिव बातें रहेगी, ठीक है, कुछ पॉजिटिव बातें रहेगी, कुछ क्रिएटिव बातें रहेगी, कुछ इमेजिन रहेगा, कुछ इमोशंस रहेंगे, वो सारे इमोशंस को पॉजिटिव करके अप्लाई करके उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। हम लोगों ने इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज की है, जिसमें अभी तो आपको जस्ट दो सिचुएशंस दी थी, पर यहां पर क्योंकि हॉल इस तरह का है, ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अरे ग्रुप को 10 ग्रुप को अलग अलग सिचुएशन दी जाती है, फिर वो उसका ड्रामा बना देते हैं 5 मिनट में और उसको प्ले करके बताते हैं। जैसे कोई एक ड्राइवर बनेगा, कुछ ये बनेगा, 5 मिनट के अंदर सब कुछ करना होता है और वो बहुत सुंदर एक प्ले बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है 6 थिंकिंग हैट्स, ठीक है। तो ये एक चीज, THINKING, जी अर्थात गो अहेड एंड डे ड्रीम। जितना विजुलाइज करेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, जितने भी महान लोग हुए हैं, शुरुआत एकदम छोटेपन से हुई है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊंगा, हम जिस मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ते थे, वहां पर जो डीन थे डॉक्टर आईचित, उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया था कि मैं जब पहली बार इस मेडिकल कॉलेज में आया 1960s में, फर्स्ट MBBS स्टूडेंट, मैंने सोचा था कि जिस मेडिकल कॉलेज में मैं जा रहा हूं उसी का मैं एक दिन डीन बनूंगा। 1960s में उन्होंने ये सोचा, एक डे ड्रीम, और उसके विषय में सोचते रहे, और फिर धीरे 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 वो एक विजन, वो पिक्चराइजेशन, वो कलराइजेशन, और धीरे धीरे वो साकार हो गया। एक चीज जो बताई जाती है थिंकिंग में, वो है विजुअलाइजेशन, देखना, कलर भरना, और उसको देखते रहना, और उसके ऊपर काम भी करते रहना। विजुअलाइजेशन एंड वर्किंग टुगेदर, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सबसे गरीब घर में जन्म लिया, 7 साल का था, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, उसका काम था स्कूल में जाना और घंटी बजाना बीच में, दो क्लासेस के बीच में, पर वो कहता था टन टन टन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। उसके जो चिंतन था, उसकी जो विचारधारा थी बचपन से, वो ये थी कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पर शुरुआत कहां से हुई? एकदम बचपन से, और वो विजुअलाइजेशन। तो थिंकिंग में विजुअलाइजेशन का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। तो इतनी ये कुछ बातें जो हमने देखी, इसका कुछ विस्तार कल भी देखेंगे। तो अपने आप को स्टिमुलेट करना है, किस चीज के लिए? विचार करने के लिए। कोई भी चीज को ऐसे ही तुरंत स्वीकार नहीं करना, तुला पे तोलना, तर्क की, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीजें उसमें आए, और फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ ठोस एक निर्णय जीवन में लेना। अच्छा, ओम शांति।